राम परम सदैव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 14 मार्च 1991 सायं लगभग 3 बजे राम धाम वृंदावन राम
प्रपन्न पारिजाताय सोतवेशी कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीताविदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीतदाभास् पीताम्बरागुणबिम्बफलाधरोत्सवः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दवेत्या कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओमात्मने नमः श्रीगुरुभ्याय नमो नमः श्रीकृष्णगमतेभ्यो नमः नारायण 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 मनुष्य सच्चे हृदय से केवल भगवान की शरण हो जाए फिर आप सब बातें होती उसका प्रबंध करना भगवान की जिम्मेवारी हो जाती ऐसी एक विलक्षण बात है भीतर से बिल्कुल कोई दूसरा भाव नहीं हे नाथ मैं आपका हूं बस जैसे विवाह होने पर लड़की अपने को कुंवारी नहीं समझती ऐसे ही आज मैं भगवान के शरण हो गया अब मैं किसी का नहीं हूं ऐसा नहीं मैं तो भगवान का हूं मेरे मालिक भगवान है सदा के लिए ये हो गई बात अब उस लड़की की ये नहीं होता कि मैं कुमारी हूं एक बार ब्याह हुआ एक बार क्या हुआ एक बार विवाह हुआ तो एक बार इतना है कि मृत्यु ग्रंथ है सदा के लिए है ऐसे हृदय से मैं भगवान का हूँ ये मान रहे कि जो सुख आवे दुख आवे अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे जो कुछ आवे उसमें प्रसन्न रहे भगवान का मैं हूँ भाई और मेरा कोई नहीं मैं और किसी का नहीं हूँ ये मीराबाई का स्वरूप है कोई धारण कर ले भाई भाई हो बहन हो कोई हो मैंने तो गिर सर गोपाल दूसरो न कोई सदा के लिए फिर अपने लोक की परलोक की कोई चिंता उसकी नहीं रहती अगर रहती है तो भगवान का अर्पण नहीं किया ब्याह होने वाली लड़कियां नहीं समझती कि मेरा ब्याह नहीं हुआ है मैं अकेली हूँ मेरा मालिक कौन है कहाँ रहूंगी क्या खाऊंगी क्या करूंगी कैसे करूंगी कोई प्रश्न नहीं होता घर में माँ है माँ से रवाना होते समय ये किसी लड़की ने नहीं कहा मैंने नहीं सुना कि माँ थोड़ा आटा तो दे दे साथ में रोटी बनाऊंगी कहाँ खाऊंगी कैसे कहीं आज की बात तो मैं नहीं कहता भाई नमस्कार ही करता हूँ परिचय नहीं है लड़के के साथ कभी परिचय नहीं कभी लड़के ने लड़की को देखा नहीं और लड़के ने लड़की को देखा नहीं अब आज तो कुंवारी अवस्था में घूमते हैं साथ में महान है न्याय महान पाप है मैं इसको कभी ठीक नहीं समझता करो मर्जी और जो करो हमारे कोई राज्य नहीं पास मैं दंड भेज देता बिल्कुल अन्याय की बात अपरिचित लड़का ये मैंने देखा है मेरे देखी हुई बातें है अब ऐसा कि एक रोड़ खाता हो रहा है पहले नहीं था भाई नहीं बिल्कुल अपरिचित कोई परिचय नहीं लड़के के साथ माँ बाप कर देते तब वो हो जाती और पति पतिव्रता होती, बड़ा श्रेष्ठ होता, घर अंदर जितना सुगमता से शांति से रहता, आज वो शांति नहीं है, घर में खटपट होती है, पति पत्नी लड़ते हैं आपस। मैं तो कभी कभी एक और बात कह दिया करता, यदि भी वो बात इतनी बढ़िया नहीं है पर तो मेरे पढ़ने में देखने में आई है, जिन जिन लोगों ने स्वयंवर किया है, स्त्री ने अपने पति को भरा है, उनके सुख नहीं हुआ है, अगर माँ बाप ने जिनको सौंप दिया हुआ है उनके दुख नहीं हुआ है। सीता ने स्वयं किया कौन सुख पाया, द्रौपदी ने स्वयं किया कौन सा सुख पाया, जितने स्वयं हुआ नल्द मेहनती ने स्वयं किया क्या सुख पाया। ये बात कहने लायक नहीं है, पर मैं कहता भी नहीं हूँ, मैं कभी कभी कह देता हूँ, आज कह दी। तो स्वयं लड़की लड़के को स्वीकार करे वो खतरे से खाली नहीं है, और माँ बाप करे तो उन पर जिम्मेवारी नहीं है। सावित्री ने सत्यवान को भरा तो बाप ने कहा, सावित्री बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर, उसके पिता अश्वपति का नाम था अश्वपति, तो अश्वपति ने देखा इधर उनको कोई ऐसा अपनी बेटी के लिए वर पसंद नहीं आया, बिना पसंद आए मेरी ऐसी सुंदर श्रेष्ठ अत्यंत सुंदर स्वभाव वाली, शरीर से भी सुंदर और स्वभाव भी बहुत ही पवित्र, ऐसे पवित्र कन्या को मैं बिना अपने समझे किस भर को दे दूं, कैसे दे दूं, इतनी मेरी प्यारी पुत्री है यार, स्नेह की पुत्री बिल्कुल शुद्ध निर्मल सुंदर, भीतर से भी सुंदर और पुत्री। महाराज जनक जी भी जब सीता जी को रवाना करते हैं तो गोसल लिए मिट्टी महामर्जा ज्ञान की, यार की महामर्जा है जनक जी ने, वो बात टूट गया रोने लग गए, बेटी यार तो चली जाएगी, कितना स्नेह है बताओ। ऐसे अशुपति का भी पुत्री पर बहुत स्नेह, तो लाचार हो गए कि मैं अपनी जान से किस भर को दू, ऐसा भर मेरे को दिखा नहीं है, मिला नहीं है, तो कहा बेटी तू अब चल जा तीर्थों में, जाया घूमेगा, तू जिसको स्वीकार करेगी उसके साथ ब्याह मैं कर दूंगा, वो खर्चा लगाना करना जो कुछ परिश्रम है वो मैं करूंगा, पर तू किसी भर को स्वीकार कर ले। पिता ने कहा है वो स्वयं भर नहीं किया है, कह दिया, और बहुत अच्छे बड़े बूढ़े समझदार आदमियों को स्त्रियों को साथ में कर दिया कि बेटी को तीर्थों में घुमा लाओ, तीर्थों में घूमे वहां उसने सत्यवान को स्वीकार किया। सत्यवान क्या था, जंगल में रहता था, बाप का राज्य था, सत्यवान के बाप का राज्य, और उसे लोगों ने निकाल दिया, जंगल में चले गए, ऋषि मुनियों के आश्रमों में रहते थे, जीवन निर्वाह बड़ी तंगी से होता था, ये हालत थी, कासाय कपड़े पहने थे, मंगोल कपड़े, ऐसी अवस्था में सत्यवान को देखा तो सावित्री ने स्वीकार कर लिया, सत्यवान को पता ही नहीं, रुका ही आई तो उसने कहा कि ऐसी बात, मैं ऐसे एक राजऋषि जंगल में रहते उनका पुत्र है सत्यवान, उसको मैंने अपना स्वीकार कर लिया। ये बात हुई उस समय नारद जी महाराज आ गए, तो नारद जी महाराज से पूछा अश्वपति ने कि महाराज सत्यवान को मेरी बेटी स्वीकार करती है, उसे क्या है, कहते बहुत ही श्रेष्ठ, पुरुषों में आजकल लड़कों में सत्यवान की दिशा पूजा नहीं है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही श्रेष्ठ स्वभाव है उसका, प्रशंसा करी। और महाराज कमी की एक बड़ी भारी कमी है, वो सब ठीक है, एक बहुत बड़ी भारी कमी क्या है महाराज, आज का दिन है ये 12 महीनों के दिन ये आएगा उस दिन को मृत्यु हो जाएगी। गुण तो क्या काम आएगा, जब मर जाएगा तो काम क्या है, गुण सही नहीं रहेगा। तो अशुपत्नी क्या देखो बेटी विशान हुए देव ऋषि भागा, नाजी ने कहा है झूठा नहीं होगा, अब तुम तेरा विचार करो, कहते पिताजी मेरे विचार किया हुआ है। एक बार स्वीकार करती है लड़की वो दुआ नहीं होती, सरल अल्प पता थी श्लोक का, एक बार ही भाई भाई बंटवारा करते तो एक बार होता है, और मैं देता हूँ दूंगा ऐसा भी एक बार ही कहना होता है, और किसी बात क्या थी
कन्या वाली
है जी,
भाई भाई की और देता हूँ एक कन्या वाली।
हाँ सही बात, एक तो कन्या स्वीकार कर देती है, एक वो देता हूँ कह दिया, और एक भाई भाई अलग होता है, ये एक बार ही लेता है निर्णय का भी सकल सकल एक बार ही होती। तो मैंने अपने एक बार स्वीकार कर लिया, अब जीवे तो नहीं जीवे तो अब सुख पाऊंगी दुख पाऊंगी, अब दूसरा हो नहीं सकता, कितनी विचित्र बात है, कितनी जोखिम की बात है। तो पिता ने कहा बेटा अब मैं क्या करूँ, पिताजी जो होगा मेरे भाग्य में हो जाएगा। अशुपति पहुंचा वहां, उस सत्यवान के पिता को कहा, मिला मैं मुख राजा हूँ ऐसा हूँ, परिचय दिया, मेरे कन्या है एक, आपके पिता को जाना चाहता हूँ। कहते मेरा भी मन था परंतु मेरी अवस्था नहीं, आप राजा हो राजकुमारी है, हमारे राज्य कुछ नहीं, हम तो जगह बैठे हैं कंदमूल फल खाकर निर्वाह करते हैं, ऐसे आपकी राजकन्या कैसे रहेगी, ऐसे प्रेम से आदर से पली हुई एक लड़की हमारे यहाँ कैसे रहेगी, कि महाराज ये तो कन्या जाना है आप। मैंने आप पूछा वो कह मैं तो बड़ी खुशी को ले सकता हूँ परंतु मेरी वो अवस्था नहीं है, इस वास्ते मैं लाचार, इसको कोई विचार नहीं। तो बस बहुत आनंद की बात है, हम तो आपके साथ संबंध जोड़ना चाहते ही हैं, ऐसे घर में लड़की मिले हमारे और क्या चाहिए, कोई बात नहीं ब्याह कर दिया, सब विधि विधान से जो कुछ दहेज वह दहेज सब कुछ कर दिया। वो चले गए तब अपने बक्से में सब चीजें रख दी और वैसे ही कपड़े पहन दिए सारी चीजें, जैसे पति गरीब हो गए थे वैसे ही कपड़े पहन दिए, वैसे ही गरीबी से रहने लगे। सत्यमान जंगल में जाता सूखी सूखी लकड़ियां वृक्षों में काट करके वो लेकर आता, उनसे जो कुछ पैसे बच जाते उससे अपना जीवन निर्वाह करते, ये रोजाना की उनकी वृत्ति। अब वो दिन आया सावित्री के देखने में, तो उसने उपवास किया, अपनी सास से ससुर से आज्ञा ली कि मैं आज उपवास करूंगी। अच्छा बेटा कर लो, अरे पुत्र वधु पर स्नेह तो माँ बाप का होता ही है, पुत्र से कम स्नेह नहीं है पुत्र वधु पर, तेरा कोमल शरीर है भूमि कैसे रहेगी, कि मेरा ऐसा मन जादे का स्वीकार व्रत कर दिया। दूसरे दिन सत्यवान जब जाने लगा लकड़ी देने के लिए तो उसे पगा जाकर पड़ी कि आज मैं आपके साथ चलूंगा, आज दिन है वो, उस सावित्री को पता है कि देव ऋषि ने कहा वो दिन है आज तो मैं साथ चलूंगी। कहते प्रिय मैं फिर उसे जाता नहीं, जंगल का विकट रास्ता है, अब लकड़ियां चुगने के लिए जाता है कोई रास्ता तो नहीं है, वहाँ रास्ते ही नहीं है, झाड़ी से जाना पड़ता है। कहते जो कुछ हो मेरे को माना मैंने कोई आपसे बात नहीं की, अब आज कहती हूँ साथ चलूंगी। तो कहा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माँ बाप है उनसे मांग, आगे भी दे दे तो मैं मांग सकता हूँ, इसी कर सकता हूँ, और मेरे हाथ की बात कुछ नहीं। सागर साथ के बोलो पड़ी कि आज मैं प्राणनाथ के साथ जाना चाहती हूँ। कहते बेटी आज कल में कल की उपवास की हुई भूखी और ऐसा विकट जंगल, उसमें कैसे जाएगी, कि मेरा मन है बहुत कुछ कहा। सास ने कहा बेटी तेरा कोमल शरीर राज बना नहीं पड़ी हुई आराम से रही हुई कि नहीं, आपसे आज्ञा मांगती हूँ मेरे बाहर क्या देगा, कभी मैं क्या दे दू, तेरे ससुर से पूछो, तेरे ये काम आप कर दो। वो जाकर अपने पति से कहती है कि हमारी पुत्र बधु कहती है मैं आज मैंने प्राणनाथ के साथ जाऊंगी। वो भी कहने लगे अंधे थे, अंधे अंधे हो गए थे, कैसी कन्या राजघराने की जंगल में कैसे निभेगी कैसे जाएगी। फिर उसने बहुत कहा है और उसने एक प्रार्थना करी है कि 12 महीना हो गया आपसे मैंने कोई चीज नहीं मांगी, एक ही चीज मांगती हूँ, ये मेरे को मिलनी चाहिए। अब क्या कर, ऐसा वचन था हमारा। राजा ने कहा अभी ये क्या करें, अच्छी बात साथ में गई है, जंगल दिखाया, झरना दिखाया, वृक्ष दिखाए, वो दिखाता है वो साथ चलती है। जंगल में एक वृक्ष था उसके ऊपर सूखी लकड़ियां बोल वृक्ष पर थी, तो वो ऊपर चढ़ गया कुल्हाड़ा लेकर के, वे लकड़ियां काट कर नीचे फेंकता रहा और वहां सारी चुन करके इकट्ठी करती रही। ऊपर से कहा कि अब मेरा जी कुछता है, ठीक नहीं है मेरा, कुल्हाड़ी फेंक दी नीचे उतर गया कि अभी मेरे ठीक नहीं है, बड़ी घबराहट हो रही है, तो आप सो जाओ। अपने गोदी में उसका सिर दे दिए रख लिया और हवा करती रही अपने कपड़े से, पंखा तो कहां से लगा है, कपड़े हवा करती रही, आप सो जाओ आराम से, आप सो गए सर। तो एक लाल पुरुष दिखा, लाल कपड़ा वाला काला पुरुष भैंसे पर चढ़ा हुआ, और वो आया उस जीव खेचने लगा जमराज को, महाराज आप कौन है, कि मैं जमराज हूँ, कि मैंने तो सुना है कि आपके दूत आया करते हैं प्राणी को लेने के लिए, कि वे आए तो थे परंतु पति पिता तेरी गोदी में सोते हो जा सके नहीं, इस बार से खुद आया हूँ मैं लेने के लिए, जैसी मर्जी आपकी, प्राण खेस लगे तो उनको धीरे से नीचे सिरकर लौटा दिया। अरे वो साथ साथ चली कि तू कहाँ जाएगी, कि आपके साथ जाऊ, मेरे प्राण ना थे उनके साथ जाऊंगी मैं, तो कहते हैं हमारे संयम ने पूरी में जीता पुरुष नहीं जाता है, कहते आपकी कृपा से मेरे को कोई नहीं रोक सकता है, मैं जा सकती हूँ। तो जमराज की बात तो ठीक है, पति बता है तो बेटी तो हमारे वरदान मांग है और चली जा, वरदान मांगने का वरदान मांगा कि हमारे पिताजी की आंखें ठीक हो जाए और इनका राज्य मिल जाए पीछा, फिर अब दूसरा चलती है कि आप जैसे महापुरुष मिले, इतने से वरदान मिले, संतों के संघ का, महात्माओं के संघ का तो बड़ा भारी महात्म है, इसमें मिलेगा। अच्छा बेटी एक वरदान और है, तो उसने कहा हमारे पिता के 100 पुत्र हो जाए, भाई था नहीं पिता के 100 पुत्र हो जाए, कैसे हो जाएंगे, बेटी अब कहाँ जा रही है, महाराज आप जैसे महात्माओं से कुछ मेरे जो इतना मामूली मिलता है क्या, आप जब मेरे भाई भी हो जाए, मेरे भी 100 पुत्र हो जाए, अच्छा लगेगा, फिर जाने लगे अब कहाँ जा रही हो, आपने वरदान क्या दिया है, जब रखे मैं तो चला गया भाई प्राणनाथ बाप जीता रहे सौपुत्र कैसे हो जाएंगे। अच्छा बेटा तेरे 400 वर्षों की उम्र होगी 100 तेरे बेटा होगा अच्छा पहले की दशा ये थी तो ऐसे में महाराज पति वृद्धाएं थी वो तो ये सात सोलह छोरी कुंवारी अवस्था में साथ रहना अच्छा नहीं है बिल्कुल अन्याय की बात है। परंतु अपनी स्वतंत्रता से करने पर सुख नहीं होता और माँ बाप के अधीन होने से दुख हो भी जाता है नहीं भी होता पर बड़ी बड़ी पति प्रथाएं हुई है। अश्वपति ने लाचार होकर कहा बेटी के लायक मेरे को कोई वर दिखता नहीं मैं अयोग्य वर को कैसे प्यारी पुत्री दे दूं और उसने ये कहा पुत्री पर मेरी बेटी इतनी सुंदर इतनी सुलक्षण इतनी इसलिए तब वो परोसता से किया तो फिर वो जी गया सब कुछ हो गया राज भी आ गया सब हो गया। तो वास्तव में जैसे सावित्री ने कह दिया कि भाई देवर्षि नारद ने कहा तुम्हारे महीने में सावित्री मर जाएगा पिता तुम पति तुम्हारा मर जाओ ये पक्का विचार ऐसे अपने आप को भाई बहन कोई भी मन से भगवान के प्रति कह दे हे नाथ मैं तो आपका हूँ मैंने आपको स्वीकार कर लिया जैसे सावित्री ने स्वीकार कर लिया ऐसे मैंने तो आपको स्वीकार कर लिया मैं आपके चरणों का दास हूँ आप मेरे मालिक है सो कुछ सो आप ही ऐसे भगवान है फिर निश्चित हो जाओ कितनी जोखिम की बात है भगवान मरते नहीं भगवान त्याग करते नहीं दुख देते नहीं वह तो मृत्यु था मेरा सामने उस पर लड़की ने स्वीकार कर लिया या कोई जोखिम नहीं है उससे बढ़कर कोई संसार में है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं कोई हो सकता ही नहीं और हम साधारण जीव तो कह रहे हे नाथ मैं आपका हूँ हृदय से कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया अब चिंता दीन दयाल को मोहन सदा चिंता तो भगवान जाने भगवान का काम हमें कोई चिंता नहीं कोई विचार नहीं हमें भगवान ऐसे सज्जनों बहनों भाइयों विचार कर लिया भगवान को हमने तो दे दिया बस अब क्या हुआ चिंता मिली न चिंता है न भय है न शोक है न शंका है चारों बस नहीं भय नहीं कितनी विष्णु बात और शोक नहीं भय नहीं शोक नहीं और शंका नहीं और क्या कहा
चिंता
नहीं ना चिंता है ना शोक है ना शंका है ना भय नहीं भय होगी भय ये जितना रहे तो और भगवान का संबंध मान लेता है उतना भगवान पर विशेष जिम्मेदारी आ जाती है ऐसे जीव मात्र की जिम्मेदारी भगवान पर है आप भजन करे न मने भगवान को माने न माने आस्तिक है नास्तिक है कैसे है आप इसी तरह भगवान देखते ही नहीं सबका प्रबंध करते हैं आपका हमारा जहाँ जन्म होना हुआ भगवान ने कराया हमने नहीं किया आपने हमने जान करके अपने यहाँ माँ के जन्म नहीं लिया बहनों सोच लो भाई सोच लो मेरे को याद नहीं है भाई भगवान के जन्म है सब प्रबंध भगवान का ही किया हुआ है वे सबका प्रबंध करते हैं तो जो शरण हो जाए सर्वथा यो ही विश्वम्भरो देव सगिम भगवान देख सके मात्र संसार का पालन करने जीव जंतु अरे ऋषि मुनि नए राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच स्थावर जंगम सब जीव का प्रबंध करते हैं तो शरणागति रक्षा नहीं करेंगे और नहीं करेंगे तो हमें क्या करना है हमारे नहीं सही उसकी मर्जी और जैसे करो लोग दिन कहता जाएगी राग तिहारी नाथ मेरो का बिगड़ेगा मुपति पास पास गए तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाए, अपने मन से किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं, किसी की गवाह की जरूरत नहीं, किसी से कुछ विचार करने की जरूरत नहीं। सच्चे हृदय से भगवान को स्वीकार कर ले, अब सुख आवे दुख आवे अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे खुद ही आओ भले, हमें क्या बदला, और क्या तो अनुकूलता से रहना है क्या प्रतिकूलता से रहता है, हमें कुछ मतलब है ना। सुखदायी परिस्थिति से मतलब है ना दुखदायी से मतलब है, ना भय भय नहीं है कि प्रतिकूलता आ गई चिंता आ गई, कोई चिंता नहीं। मोक्षी से अभी माँ सोचे भगवान ने कह दिया शोक मत करो, तो हम शोक क्यों करें, माँ एक शरण मुझे शरण हो जाओ सब पाप से मुक्त हो तो तू चिंता मत कर, तो शरण लिया चिंता दीन दयाल को गोमन सदारण जो जाको शरणों दियो ताकत आदि लाज, हम क्यों लाज हमारी क्या शरण हमारी क्या चिंता है हमारी क्या शोक है। भगवान को देखिए आप इतनी सी बात है, गीता में इसको सर्व गुह्यतम कहा है, गुह्य होता है गुह्यतर होता है गुह्यतम होता है सर्व गुह्यतम कहा, सबसे गोपनीय बढ़िया बात भगवान ने अपने हृदय की बात सच्ची बात कही, विशेष मूल्यवान बात कही। अब बस निश्चिंत हो जाना हमारा काम है, शरण होना शरणागत का काम, रक्षा करना भगवान का काम, और प्रेम करना दोनों का काम। तो प्रेम ऐसे ही भगवान अपने उसकी शरण हो जाए, हे नाथ मेरे स्वाम मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मोर पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, हमारे और कोई नहीं आप ही हो केवल आप, ये बात एकदम तो सर्वोपरि साधन है। गीता पूरी सुना दी, पूरी सुनाकर भगवान का एक तरह मैंने कह दिया भाई, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया, अब मैंने से एक दशे है सबका विचार कर लेना कि इतने से तक हो तेरे जैसे मर लिया हो जैसे साफ। अर्जुन घबरा गए कि मेरी मर्जी आवे जैसे करता है तो साधिमान त्वाम प्रपन्नम क्यों कहता है कि आपके शरण रक्षा कीजिए, मेरी मर्जी से कर लेता मैं तो आपके शरण हूँ। घबरा गए तब भगवान सर्व गुह तब फिर सुन गए फिर सुन गए, अब सब गीता विचार कर गए तो वो विचार भगवान में जितना सुगम है अर्जुन के सुगम है इतना इतनी सुनी जी बात सब में सार क्या निकालेगा, मैं निकाल नहीं सकता है। भगवान कह मैं कहता हूँ सर्व गुह तम कहता हूँ सार बात करता हूँ मन मना भव नाम ये तुम सर बात उसने स्वीकार कर दी। कितनी विलक्षण बात है, अर्जुन को भी बातें मिली साक्षात भगवान अर्जुन का रथ हांकते हैं आज्ञा पालन करते हैं, उनको भी इतनी मुश्किल अपने ऊफ में मिली अपने क्या जोर रहा है साहब अपनी क्या जोर है, अर्जुन ने तो अपने बागडोर भगवान को सौंप दी, भगवान ने संभाल ली तो भगवान नहीं है आज भी भगवान है, तो भगवान तुझे बदल गए हो कल दुखाने से ऐसी बात नहीं है, वही है दिखे चाहे ना दिखे सामने आवे चाहे ना आवे हमारे क्या मतलब है, भगवान ही है सच्चे जिसे कह दे नहीं करना था मेरी जैसी मर्जी मेरे कोई आग्रह नहीं, ये तो ये मन में आ गई कि भाई आप यहाँ का ये गोपाल का अंतिम सत्संग है, सुबह एक और है गोपाल का अंतिम सत्संग है, तो हमें क्या कहे तो मन में आएगा शरणागति ठीक है, ये ऐसी आई मैंने अब इस पर आप बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई दबाव नहीं है किंचित मात्र भी, मैंने मेरी दृष्टि से अच्छी बात सुन ली, बता दी। अब और मैं कहाँ से लाऊंगी, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न माने अधिक कहाँ से ला, उसका बुरा क्यों माने अधिक वो कहाँ से ला। ऐसी बुद्धि है, ऐसे विचार है, इतना याद है, उसमें कहता है। कोई भी वक्ता अपनी दृष्टि से बढ़िया ही कहेगा, तो अपनी फजीती कौन चाहता, मुझे बड़ी इज्जत ही चाहते है, तो अपनी दृष्टि से बढ़िया ही कहेंगे बस। पर कहेंगे तो अपने योग्यता के अनुसार ही, अभी कहाँ से ध्यान होता, ये बात सीधी सरल बात, तो भगवान के चरणों की सरल होता। अब भगवान जाने, भगवान का काम जाने, हमारी कोई परिकार की नहीं। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निश्लोक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निश्लोक निशंक, कोई शंका नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई उद्योग नहीं, क्या करे कैसे करे, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, गीता के अनुसार जीवन बना हुआ है। गीता के अनुसार नहीं बने कठिनता है, भगवान से कहो कि महाराज ये हमारी कठिनता है, जो कुछ कह सको आप करो, भगवान से कहते हो। कितनी शुभम बात, कितनी सरल, कितनी सीधी, बढ़ती माँ अपने सब सुन वैसा करो, नहीं हो सके तो कह दो नाथ ये मेरी सोचता नहीं बना, मन दौड़े तो देखो मेरा मन दौड़ रहा है, देखो मेरा मन नहीं लग रहा है, हम क्या करें, अपने कर सके जितने में हम कमी नहीं रखे, बस हम नहीं कर सकते कह दें भगवान से, क्यों नहीं कर सकते, वो करने का बल भी दे, योगक्षेम वह हमने, हम भगवान योगक्षेम वहन करने के रहते, गीता के बीच में दूसरे नौवे अध्याय का 22वां श्लोक, अनंत आस्तिकम को वेदना परिपास तेषा नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे जो नित्य अभियुक्त मेरे शरण है उनके योग क्षेम अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करना, भगवान की देश ये मेरे जिम्मा है, अनन्य योग मेरे चिंतन का है, अनन्य में और किसी का नहीं, पति व्रत एक अजानी, पति बसा एक पति होता बस एक, और मेरा कोई नहीं, मैं और किसी का नहीं, इतनी बात। इसमें होने पर भगवान कहते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति मैं कराऊंगा, प्राप्त वस्तुओं की योग्यता की रक्षा मैं करूंगा, सबके जिम्मेवारी भगवान अपन अपने लेते हैं, केवल माम ही कम शरण हो जाए, अनन्य भाव से शरण हो जाए, एक लाख दूसरों में कोई बाहर गई चली गई। इधर महाराज अकाल पड़ा, प्रजा बड़ी दुखी हो गई, कारण ये है कि मीरा बाई चली गई, चित्तौड़ उदयपुर में बड़ा भारी अकाल पड़ गया, कुछ मेरसा में पड़ गया, सास पीर गुम गई, मन में आया कि हमारी बेटी से छोड़ गई, हमारी वो हमारी बहू से छोड़ गई चली गई, ये कारण है। दोनों जगह के बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण आदरणीय वे पहुंचे द्वारका जी, जितने सास रह गए वगैरह देने निशा अब पढ़ा, हाथ जोड़ के जैसे कहते हैं ब्राह्मण कि आप पधार, उधर बैसा आप पधार, पीर के जितने उनके बैसा है और ससुराल की उनके वीर निशा है, बड़े आदर से कहते आप पढ़ा, हम आए हैं बूढ़े बूढ़े क्या हुआ, मेरा भाई बड़ी विचार में पड़ गई, ऐसे वृद्ध पूजनीय आदरणीय ब्राह्मण कह रहे हैं, अब इनसे बढ़कर हमारे कौन है, सास ससुर से भी बड़े क्योंकि उनके भी पूजनीय है, हमारे परिवार के इधर माँ बाप के भी पूजनीय है, मैं तो बालक हूँ इनके, बड़े विचार पूरी क्या करूँ, इनको ना भी कैसे कहूँ, अब जाने का मन नहीं, तो भगवान के सामने चले, मैं जाऊँ भगवान से मिल लो, भगवान से कहा महाराज मिल भी शरण मत कीजिए, महाराज ये मिल भी शरण नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वितरित प्रवेश होगी शरीर सहित हार्ड मनुष्य का शरीर वो भगवान की स्त्री विग्रह में प्रवेश हो गया। मुख में थोड़ा सा कुंडली का छोड़ देंगे पता लग जाएगा वहां कहाँ गई मेरा इसका पता लग जाए वो कुछ नहीं करेगा और कुछ नहीं क्या कर देगा सब बंद करेंगे समाधि भगवान में तब तो विचार की मेरे तो दूसरों ने कोई खास मेरे तो भगवान है गिरधर गोपाल ऐसा कह देंगे पर दूसरों ने कोई ये नहीं कहते माँ बाप है भाई बंधु है कुटुंबी है परिवार वाले हैं स्त्रियों के पति पुत्र आदि बहुत परिवार है उनमें भी मेरे है नहीं कोई भी जब मृत्यु आएगी उसमें कोई आ नहीं सकेगा सहायता करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे तो कर सकेंगे नहीं और कौन है बस अभी किसी की मृत्यु हो हम कहते हमारे इतने सत्संगी है क्या करोगे अधिक से अधिक रो दोगे हमारी क्या फायदा हुआ रोए तो अभी रोए तो क्या सहायता हुई हमारी आप सबके सब रोने लग जाओ तो मेरी क्या मदद मिलेगी इसके सिवाय आप क्या कर सकते वो भी सगड़ा नहीं कि ज्यादा हो तो ज्यादा रहो थोड़ा हो तो थोड़ा नहीं तो पर वही नहीं मजे हो मजे हो मजे हो तो उनके भरोसे क्या रहे ऐसे निजी खास अपने आदमी भी कर कुछ सकते नहीं चाहे तो भी कर नहीं सकते इसमें किसी का बल काम नहीं देता तो हम चिंता क्यों करें क्यों हमारा चिंता जाना चिंता भी नहीं वो जाने उसका काम जाने ऐसे सत्य ऐसे ऐसे ये वृंदावन का वास है भगवान का धाम है श्री जी का खास महल है इसमें अपने बैठे महाराज मैं तो आपका हूँ साथ भी हूँ महाराज दूसरा में कोई मेरे और कोई रक्षक नहीं कोई सहायक नहीं है मेरा तो कोई नहीं है ही उसके समान भी कोई नहीं तो बढ़कर कौन होगा बताओ न तो समोस तब व्यधि का खुद हो गया समान भी नहीं है उसे बढ़कर कौन होगा कोई है नाथ होता आपके साथ अब सुख हो दुख हो लाभ हो नुकसान हो मान हो चाहे अपमान हो निंदा हो चाहे प्रशंसा हो जो कुछ हो जैसे आपकी मर्जी हो जैसे जहाँ जैसे आप रखोगे जहाँ रखेंगे राम जी तो वहाँ रहेंगे दास भी रखेंगे जिस अवस्था में जैसे हालत में जहाँ मस्ती से रहेगा अपने भगवान की मर्जी है भगत कहता दिवी वाह भूमि वाह ममास्तु वासो नरके वाह नरकांत का प्रकार स्वर्ग में भेज दो पृथ्वी पर भेज दो बेशक नरक में भेज दो जामल जी बेशक नरके वाह नरकांत का प्रकार ये नरकांत का बेशक नरक में भेज दो बिल्कुल निस्संदेह तो तुम क्या चाहते हो कि आपके चरणों का चिंतन न छूटे अवधि शारदार बिंदो चरणों से मरने की अवस्था में महासंकट की अवस्था में आपके चरण में छूटे चिंतन और कुछ नहीं था आपके चरणों का चिंता ये हमारा सहारा ये हमारा आधार है ये हमारे पास पूंजी है संपत्ति है खजाना है कुटुंब है भाई बंधु सास ससुर पति पुत्र जो कुछ है वो एक ही मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरों में कोई और मेरा कोई नहीं है आप जानो आपका काम सीधी सर्वास मेरा कोई नहीं मैं किसी का नहीं हूँ मेरा कोई नहीं माम एकम शरण मुझे भगवान साक्षात कह रहे तो मेरे अनंत शरण हो जाओ सब पापे भी मोक्ष सब पापों से मुक्त मैं करूंगा तू शोक मत कर तो शरण हो जाए शोक भी हम करें शोक करो तुम करो हम क्यों करें चिंता करो तू तुम करो क्या मतलब है मतलब नहीं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब मेरी चिंता मैं क्या करूं बताओ, मैं तो अपने सौंप दिया आपके चरणों में। ये इतनी विलक्षण बात है, आप में सद्गुण सदाचार ज्ञान विलक्षणता सब आ जाएगी। आश्चर्य आवे कि क्या हो गया भाई, कल परसों देखो तो देखो कि विलक्षण ये कहां से आ गई, हमारे में से गुण नहीं है ऐसा ज्ञान नहीं कहां से, वो खजाना पड़ेगा भगवान का भी पड़ेगा। पत्नी होती है ना, वो पत्नी अपने आप को दे देती है तो घर की मालकिन बन गई। बहू रानी आई है कहावत में, बहू रानी बहू रानी, वो अपने घर को छोड़ भाई बंधु कुटुम्बी सब परिवार को छोड़ करके आ गई, इधर सब कुछ की मालिक बन गई। वो पति पति बनकर गया है पर थोड़े दिनों के बाद में पुत्र बनकर गया, उसी को दे रहा वो ही पति पुत्र बनकर उसको माँ मान कर पिता भी जाए थे पुत्र, पिता ही पुत्र होता है माँ कैसे सबसे ऊंचा दर्जा माँ का, संसार में ऊंचा दर्जा माँ का है। संसार में जितने संबंध है कुटुंब है उनमें सबसे दर्जा ऊंचा है माँ का। पिता का दर्जा पिता से 10 गुना कहीं 100 गुना भी माँ का दर्जा माना है, उसी तरह हो गई। आज इन बहनों के नजरें क्या कहूँ उसको, शब्द पाया क्या पटकी पड़ गई है, पर पटकी पड़गी बिजली पड़े नहीं पर यह सोचा उसका क्या पटकी पड़ गई, माँ पढ़ने से इनकार करती है ये। बहनों माँ पढ़े बिना आपका कोई इज्जत नहीं है, नारी जाति का महान अपमान है। माँ नहीं बनती और मान किस बात का मान है, आप में सरकार क्या है, केवल पैर की जूती के लिए भोग का साधन है और कोई इज्जत नहीं है नारी जाति की। वो तो आप बताओ इतने बैठे बताओ भाई, अगर मां है तो माँ का है, अगर माँ का माँ होना कर दिया बंद तो क्या हुआ। आप स्त्री शब्द है ना, स्त्री स्त्री शब्द वो है संस्कृत में व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में उसकी तत्ववेशी टीका में उसकी बाल में मनोरमा टीका में उसके अर्थ किया है साफ, जहाँ सुख सोने पुण्य इकट्ठे होकर बच्चा बने जिसके पेट में उसका नाम है स्त्री, जिसके सुख सोने इकट्ठे नहीं होते फिर बालक नहीं बनता उसका नाम स्त्री नहीं है, स्त्री नहीं है उसको क्या कहें हम बताओ। अगर पुरुष वो है अहम बीज प्रदत्त पिता, भगवान से बीज प्रदत्त पिता होता है वो स्थापन कर नहीं सकता गर्भ को, पुरुष ऐसे धारण नहीं कर सकती। ये क्या है पुरुष को तो नपुंसक कह देते हैं पर नपुंसक है नहीं, बिना नपुंसक और स्त्री को क्या कहे हमें पता ही नहीं, उसका नाम में याद नहीं क्या कहे उसको, बिना केवल भोग भोगने की सामग्री। नारी जाति का महान अपमान है, बड़ा भारी अपमान है ये बात। अंग भंग हो गया स्त्री का भी अंग भंग पुरुष का भी अंग भंग भी खास अंग भंग हुआ, हाथ पैर कट जाए कट जाए गौण है, पर पुरुषों में पुरुषत्व है तो अपने संतान के लिए गर्भ स्थापन करने की शक्ति है और बहनों माताओं में गर्भ धारण करने की शक्ति है, वो शक्ति नष्ट कर दी। अब क्या रहा बताओ, इससे भयंकर स्थिति और क्या होती। ऐसे हमारे सत्संगी भाई बहन जाकर नसबंदी कराते हैं, गर्भपात कराती है ना। व्यास जी की पराशर स्मृति है उसमें ये बात आ रहा है कि पापम ब्रह्मत्याया, ब्राह्मण के मारने की जो पाप लगता क्या लगता है द्विगुण गर्भपात में, उनसे दूना पाप होता है गर्भपात करने से, गर्भस्राव हो जाए गर्भपात कर दे दूने अच्छा कर दे ब्रह्मचर्य से दुगुना पाप, तस्य प्रायश्चित, उसका प्रायश्चित नहीं है। कोई प्रायश्चित हो गया पाप करते ऐसा करो उनका पाप दुब जाएगा, ऐसा करो उनका प्रायश्चित है ही नहीं। अस्त्यागो भी दिया थे पुरुष के लिए कहा, ऐसे कर पास करने वाली स्त्री हो उसका परित्याग कर देना चाहिए, पति अच्छा भला आदमी हो उसका त्याग करना चाहिए, वो कोई काम की नहीं। ये दशा है हमारे शास्त्रों का, ये हुक्म है, उसको न मांगे ऐसा काम करे। अब बच्चा का पालन कैसे करेंगे, इस दुख से बच्चा नहीं पैदा हो जाए और क्या करोगे आप? मैं तो जहाँ कहीं कहता हूँ पुरुष कह देते क्या है घर में बैठी स्त्री क्या करती है, दो दिन आप गोद में रखो बच्चे को कि क्या करती है पता लग जाए, आंखें खुल जाए, नहीं रख सकती। कहा तो हृदय में सास के पास, कहा बस जब बहन के पास, बेटी के पास, बहन के पास भी वो कुटुंब नहीं आ रहा, वो कुटुंब सास का कुटुंब नहीं आ रहा, आप पालन करो, नहीं कर सकते आप, ये बहना कर सकती, माताओं में शक्ति है, सहन शक्ति है, कर सकती है। ये भी जब त्याग कर दे तो किसका पुत्र रहा, माँ बना भी बंद बंद कर देते हो, सबसे दर्जा ऊंचा माँ का, वो माँ बना बंद कर देना। पुरुष और स्त्री दोनों दोनों ही इसमें रखे आज काल बड़े जोर से। हमने सुना कि 12 करोड़ हुए हैं ये हिंदुओं की, ऐसी संख्या में 12 करोड़ नसबंदी हो गई है, गर्भपात हो गया है, ये हो गया है खास 12 करोड़। उसने से बड़ी प्रशंसा हो गई कि बहुत ठीक है, ये आज का राज्य है महाराज, अगर आप उसमें हो भर्ती के तो तकलीफ हो जाती है पालन करने में, कैसे करें। मुसलमान को 150-150 लड़के मैंने सुने संतान, 150 एक आदमी, 4 ब्याह दिया, 150 लड़का लड़की, ऐसे मैंने सुना है, 100-200 रुपया, 50 रुपया, 40 रुपया लड़का लड़की, 7-7, 8-8 आपने एक माता से पैदा होने वाले बालक ऐसे होते हैं, 7-7 लड़के हमने देखे हैं, 700 बड़े अच्छे बड़े कमाने वाले बढ़िया ऐसे हमने देखे। अब एक दो होने में भी घबराती है कि यहाँ पालन कैसे करेंगे, कौन लोग हो गए, केवल इंद्रियों के गुलाम हो गए भाई और बहना भोगों, यही तनु कर बल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय संसार नहीं है। अब कहते यही एक विषय ही इसका मूल है और कोई मूल नहीं है, वो तो आप बताओ विषय सुख के सिवाय आपका ध्येय क्या है, जो संतुष्टि निरोध करते हो इसका क्या और करते है। इस बात से भाइयों बहनों सावधान रहो, आप चिंता क्यों करते हो, वृक्ष जहाँ ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा ज्यादा होती है, तो मनुष्य ज्यादा होगा आना ज्यादा नहीं होगा, अन्न इतना ही है, अब 5 आवेगा ले लो, ज्यादा बढ़ जाए तो 5 कम आवेगा, अकल कहाँ चलेगी पता नहीं। टीढ़ी आती थी मेरे बचपन की बात है, वो तो मार मोर खत्म कर दिया, परसों आती थी तो लोगों में ये बात होती थी, मेरे को ठीक याद है कि इसका आकार नहीं पड़ेगा, वर्षा कमी नहीं रहेगी, क्योंकि टेढ़ी है इसमें आए जंतु, इनका पालन करना है ठाकुर जी को, इस बार अकाल नहीं पड़ेगा, ये सब में अच्छी हो जाती, इस साल वर्षा अच्छी होगी, जमाना अच्छा होगा इन जंतुओं के पालन करने के लिए। तो टेढ़ी के जंतुओं का पालन करने के लिए भगवान वर्षा करते हैं, क्या मनुष्यों के पालन करने के लिए वर्षा बंद है भगवान के यहाँ? ज्ञान कैसे मिलेगा, पढ़ाई कैसे होगी, प्रबंध कैसे हो गए, आप और हम कैसे हो गए? आज तो आप और हम जीते हैं, 7-8-9 संतान हुए हैं हमारे भी माँ बाप के, आपके भी हुए हैं, कैसे पले हैं साहब, किस दिन हुए देखो, आपके सामने बैठे हैं, सबसे छोटा हूँ मैं, फिर बैठूंगी क्या पता लगे, सबसे छोटा होता है उसमें कमी होती है, शरीर की और बातों की भी। और सबसे बैड पहला लड़का होता है वो बुद्धि का हीन होता है, योग्यता विशेष नहीं होती है, किसी में कहीं हो जाए बात एक अलग है। कारण के पहले स्त्री और पुरुष का आकर्षण है भोगों के लिए, वो भोग की इच्छा से जो चीज पैदा होगी तो महान अन्यायकारी होगी। अब एक हमारे हमारे हम दो हमारे दो, महान पतन होगा दुनिया का, अच्छे संतान कैसे पैदा हो। मूल में निष्काम भाव हो गए, केवल कर्तव्य करे तो धर्माविरुद्ध जो भूतेषु कामों से धर्म से विरुद्ध न हो ऐसा काम मेरा शुरू है। धर्म का नाम निशानी नहीं। लड़का लड़की महाराज स्कूल में ही ब्याह कर देते हैं, इकेले जाकर के मेरे को शादी मिले, महाराज मेरे मन में था कि मैं पुत्री का ब्याह करूं, मन वह दूसरे से लग गई चली गई उनके साथ, रोने लग गए। एक सदन मिले उनको पंजाबी, मेरा उत्साह से मेरी कन्या का विवाह करूंगा, कन्या दान करूंगा, पर क्या करूं भाग्य से साथ। एक जगह ब्राह्मण की लड़की मैत्र के साथ भाग गई, सच्ची घटना। ब्राह्मण हमारे मित्र स्नेही प्रेमी, उसकी कन्या मैत्र के साथ भाग गई। आज ये दशा हो रही है, अब क्या कहें। तो एक भगवान के शरण हो जाओ भाई हो जाओ, इन भोगों में फंसो मत, कृपा करो। नारायण 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 नारायण।
मैं तो उन संतन को हूँ दास, जिन्होंने मनवा मार लिया। मैं तो उन संतन को हूँ दास, जिन्होंने मनवा मार लिया। बस किया रे भया भरम सब दूर, रे मन माया तन बस किया रे भरम सब दूर। बाहर तो कछु दिखत नाही, बाहर तो कछु दिखत नाही, भीतर खेल के है नूर, जिन्होंने मनवा मार लिया। बाहर तो कछु दिखत नाही, बाहर तो कछु दिखत नाही, भीतर खेल के है नूर, जिन्होंने मनवा मार लिया। मैं तो उन संतन को हूँ दास, जिन्होंने मनवा मार लिया। काम क्रोध मद लोभ मार कर मिटी जगत की आस, काम क्रोध मिटी काम क्रोध मद लोभ मार कर मिटी जगत की आस, काम क्रोध बलिहारी उन संत की रे, बलिहारी रे प्रगट कियो है पर काश, जिन्होंने मनवा मार लिया। बलिहारी उन संत की रे, बलिहारी उन संत की रे प्रकट कियो है पर सास जिन्होंने मनवा मार लिया। मैं तो उन संतन को हूँ सास जिन्होंने मनवा मार लिया। मैं तो उन संतन को हूँ सास जिन्होंने मनवा मार लिया। आपो त्याग जगत में बैठा नहीं किसी से काम। आपो त्याग जगत जी उनमें तो कछु अंतर नाही। उनमें तो कछु अंतर नाही। हाँ उनमें तो कछु अंतर नाही। उनमें तो कछु नाही। संत कह हो या चाहे राम जिन्होंने मनवा मार लिया। उनमें तो कछु अंतर नाही। उनमें तो कछु अंतर नाही। संत कहो या चाहे राम जिन्होंने मनवा मार लिया। मैं तो उन संतन को हूँ सास जिन्होंने मनवा मार लिया। नरसी के तो सतगुरु स्वामी दिया अमीरस पाए। सत एक बूंद सागर में मिल गई। एक बूंद अब क्या करे गो जम राय जिन्होंने मनवा मार लिया। एक बूंद सागर में मिल गई। एक बूंद सागर में मिल गई। अब क्या करे गो जम राय जिन्होंने मनवा मार लिया। मैं तो उन संग तन को हूँ सास जिन्होंने मनवा मार लिया। मैं तो उन संतन को हूँ सास जिन्होंने मनवा मार लिया।
जय बलराम चंद्र की मोर मुकुट बंसी वृंदावन बिहारी।
बोल मती बोल मती बोल मती रे भाई। बोल मती बोल हरी नाम छोड़ दूजो नाम। बोल मती रे हरी नाम बोल मती बोल मती बोल मती रे भाई। बोल हरि नाम छोड़ दूजो नाम। बोल मती रे हरि नाम राम नाम छोड़ दूजो नाम। बोल मती रे कंद मिसरी के स्वादन तज कर। कंद मिसरी के कंद मिसरी के स्वादन तज कर। कंद मिसरी के नीमड़ रो कड़वो रस घोल मती रे भाई। भाई तू मरे रो कड़वो रस घोल मती रे। भाई तू मरे रो कड़वो रस घोल हरि नाम छोड़ तुझो नाम बोल मती रे, हरि नाम छोड़ तुझो नाम बोल बोल मती बोल मती रे भाई बोल नाम छोड़ तुझो नाम बोल मती रे कृष्ण नाम छोड़।